हमारी आज की कहानी है जनवरी की एक शाम, जिसे लिखा है डॉक्टर अनीता राठौर ने। पहला प्रेम भुलाई नहीं भूलता, और उस हालत में तो कतई नहीं जब जीवन साथी याद दिलाता रहे। आधा दर्जन जनवरी की शाम मेरे लिए क्यों खास थी, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ के खूबसूरत रोज गार्डन में पहुंचकर ऐसा लगा मानो गुलाब के शहर में आ गया हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पहली बार आया था। इसके पूर्व मैं अपनी पत्नी के साथ शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ हनीमून मनाने आया था। इस बार बैंक की तरफ से प्रशिक्षण के लिए आया तो सोचा रोज गार्डन में पत्नी के साथ बिताए गए वे हसीन वक्त फिर से याद कर लूं। मुलायम नरम घास पर बैठते ही मुझे वे खूबसूरत, मादक और रोमांचक क्षण स्मरण हो उठे। तभी एक परिचित सी हंसी ने मेरा ध्यान सामने बैठी महिला की तरफ मोड़ दिया। लगभग 42-43 वर्षीय महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह 17-18 वर्षीय दो लड़कियों के साथ किसी बात पर ठहाका लगाकर हंस रही थी। फिर उसने अपने पर्स में से कुछ रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। दोनों लड़कियां वहां से चली गई। उनके जाने के बाद जब मैंने उस महिला का चेहरा गौर से देखा और अपनी स्मृति पर जोर डाला तो मुझे उसमें सुबू की झलक लगी। सुबू यानी सबीता MSc में मेरी सहपाठिनी थी। हम एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। हमारा प्रेम साथ जीने मरने की कस्में खाना, चांद सितारे तोड़कर लाना और जमाने से टकरा जाने जैसा ना था। हमें अपने प्रेम पर विश्वास तो था, लेकिन हम जानते थे कि हमारे प्यार की मंजिल शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने परिवार की सोच और मानसिकता से वाकिफ थे। आज से 25 साल पहले दूसरी जाति में विवाह उनकी नज़र में समाज में बेइज्जती और परंपराओं का उल्लंघन करने जैसा था, और हमारा प्यार इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था कि बगावत करके अपने परिवार की समाज में बेइज्जती कराए। हम चाहकर भी शादी ना कर पाए। शादी ना कर पाने का हमें दुख तो था, लेकिन हालात से समझौता करते हुए हमने उस दुख को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन समझकर स्वीकार कर लिया। फाइनल परीक्षाओं के बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। विछोह की उस दुखद घड़ी में हम रोए सिसके नहीं थे, हाँ उदास जरूर हो गए थे। दिल भी भर आया था, आँखों में नमी भी छा गई थी। आज 25 साल बाद सबू को देखकर कॉलेज के दिनों वाली चाहते और हसरतें फिर से अंगड़ाई लेने लगी। जी चाहा उसके पास अभी दौड़कर चला जाऊं, लेकिन मन में एक संकोच था। अगर कहीं वह सबू ना हुई तो बिना वजह उस महिला के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तभी वहां काम कर रहे एक माली ने मुझसे पूछा, साहब आज कितनी तारीख है? 6 जनवरी, मैं झट से बोल उठा। 6 जनवरी यानी आधा दर्जन जनवरी। यह सोचकर मैं पुलकित हो उठा। हमारा मौन प्रेम जब एक दूसरे के हृदय में था, तब मैंने ही कॉलेज के गार्डन में 6 जनवरी की शाम को सब्बू से अपने प्रेम का इजहार किया था। उसने सहज स्वीकार कर लिया था। उसकी सहज स्वीकृति पाकर मेरा मतवाला दिल उस हसीन और खूबसूरत शाम को यादगार बनाने के लिए एक कविता का सृजन कर बैठा था। वो लम्हा मेरी जिंदगी में याद बनकर जुड़ गया, उस मीठी याद के नाम, उस आधा दर्जन जनवरी की शाम। मैंने तुरंत वह कविता एक कागज पर लिखकर माली द्वारा उस तक पहुंचा दी। मेरा अनुमान था कि अगर वह सबू ही होगी तो निश्चय ही कविता पढ़कर बेचैन हो उठेगी, अगर नहीं होगी तो कागज फाड़ कर फेंक देगी। मेरा अनुमान सही निकला। कविता पढ़कर वह बेचैन सी हो गई और माली को बुलाने लगी। उसने पूछने के बाद जब माली ने मेरी तरफ इशारा किया तो वह तुरंत मेरे पास चली आई। अपना चश्मा ठीक करते हुए मुझे गौर से देखते हुए आश्चर्य और हर्ष से बोली, वीनू तुम? अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह सब्बू ही थी, क्योंकि वह प्यार से मुझे विनय की जगह वीनू कहती थी। बस आई एम विनू यानी विनय, मैं अति उत्साह से बोला। तुम यहाँ अचानक? इतने सालों बाद आश्चर्य और हस्तरेख से उसके स्वर में कंपन था और आंखों में आंसू। मैं कॉलेज के दिनों वाले मस्त मौला अंदाज में बोला, बस यार आज आधा दर्जन जनवरी की शाम को तुम्हारी याद आ गई, इसलिए आवारा पागल और दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ पहुँचा। वह भी संग कॉलेज गर्ल की तरह बेखास्ता खिलखिला पड़े, सच विनू तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल पहले जैसे ही मस्त मौला बेफिक्र और शरारती, लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गई हो सब्बू। मैं उसका भारी भरकम काया को गौर से देखते हुए बोला, गौरान्वित स्वर में इतरा कर बोली, खाते पीते घर की बहू जो हूँ। बहू सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे पहले जैसा उच्च श्रृंखलित व्यवहार और कोई अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वह मेरी सुब्बू नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित घराने की बहू और किसी की पत्नी है। एक बहू की गरिमा और मान मर्यादा को ध्यान में रखकर बहुत ही सम्मानित स्वर में मैं बोला, और सविता जी कैसी हैं आप? यह सुनकर वह जोर से खिलखिला पड़ी, क्यों सविता जी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सब्बू को हो ना बड़ा प्यारा और अपना सा लगता है। 25 साल बाद सब्बू सुनकर मन को एक मीठा सा एहसास हो रहा है, इस एहसास को मैं जुदा नहीं करना चाहती। भरा स्वर और आंखों में नमी देखकर मैं भीतर तक बुरी तरह बेचैन उठा, कांपते स्वर में बोला, सब्बू तुम ठीक तो हो ना? अन्यासा कपोलों पर लुढ़क आए आंसुओं को हथेलियों में मोतियों की तरह सहते हुए बोली, सच विनू मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो वह कुछ मुझसे छिपा रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सच्चाई जानने के लिए बोला, सुब्बू मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि तुम खुश हो। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, लो हो गई तसल्ली, सच विनू मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद आज अचानक तुम्हें देखा तो आंसू रोक ना सकी, ये आंसू तुमसे मिलने की खुशी के हैं। फिर उत्सुकता से बोली, अब विनू तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी, लेकिन जो बताना सच बताना, पूरी ईमानदारी से बताना। याद रखना तुम्हारा छोटा सा भी झूठ मुझे अंदर तक बेहद दुख पहुंचाएगा। उसके अपनेपन पर मैं फिदा हो गया, वाकई वह तन से जरूर बदल गई थी लेकिन मन वही था 25 साल पहले जैसा सादगी और मासूमियत भरा। सब्बू आज आधा दर्जन जनवरी की शाम है, आज की शाम झूठ बोलना मेरे लिए एक गुनाह होगा, क्योंकि आज की शाम बोला गया झूठ तुम्हारे साथ मुझे भी बेहद पीड़ा पहुंचाएगा। यह शाम कोई मामूली शाम नहीं है, यह हमारे प्यार के इजहार की हसीन खूबसूरत और यादगार शाम है। अगर हम चाहते तो शादी कर सकते थे, लेकिन हमने अपने अपने परिवार की मान मर्यादा और खुशियों की खातिर शादी ना करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय हमने भावुकता में या किसी बदलाव या दबाव में नहीं लिया था, अपने पूरे होश हवास में लिया था। ऐसा करके हमने समाज के सामने प्यार की कुर्बानी देकर जीती जागती त्याग की मिसाल बनने का ढोंग रचा था। अभी तो जुदाई के उन कठिन क्षणों में हम कमजोर पड़कर रोए सिसके नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सुख में उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए हाथ मिलाए थे। उन नाजुक और कठिन पलों में कमजोर पड़ने से पहले ही हमने एक दूसरे को कितनी मजबूती से संभाल लिया था। यही तो सच्चे प्रेम की परीक्षा का समय होता है, और हम इस कठिन परीक्षा में कितनी सहजता से उत्तीर्ण हो गए थे। जब जब तुम्हारी याद मुझे बेचैन करती, तब तुम्हें और तुम्हारी याद को अपनी प्रेरणा बनाकर अपने को और अधिक मजबूत करके अपने लक्ष्य को मछली की आँख की तरह निशाना बना लेता। इस प्रयास से मेरी बैंक में सर्विस लगी। सर्विस के थोड़े समय बाद ही मेरी शादी अंजलि से हो गई। अपना वैवाहिक जीवन सफल और खुशहाल बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और सच्चाई से एक आदर्श पति का परिचय देते हुए तुम्हारे और अपने संबंध के विषय में अंजलि को मैंने सब कुछ बता दिया था। सब कुछ सुनकर वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, और ना ही तुम्हें लेकर कभी भी अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों के प्रति आशंकित और भयभीत हुई, ना ही कभी शक और संदेह से घेरे में उलझी। सच सबू झूठ नहीं बोलूँगा, उसके अटूट प्रेम, भरपूर विश्वास और सुलझे हुए व्यक्तित्व से मैं इतना अधिक प्रभावित हुआ कि शादी के कुछ वक्त बाद ही तुम्हें भुला बैठा। शायद तुम यकीन ना करो, हमारी जिंदगी की यह हसीन शाम अक्सर मुझे याद ही नहीं रहती, लेकिन अंजलि हर साल इस शाम को मुझे छेड़कर याद करा ही देती है। उसे छेड़ने में उसका मकसद मुझे चिढ़ाना, व्यंग करना या आहत करना नहीं होता, बल्कि मुझे मेरे अतीत के उन सुनहरे पलों को याद दिलाना भर होता है। उसकी यह दिलकश अदा साल में एक बार तुम्हारी याद दिला ही जाती है। अगर आज भी मैं उसके करीब होता ना, तो वह मुझे छेड़कर तुम्हारी याद दिला देती। मैं खामोश हो गया, फिर बच्चे की तरह मचल कर जिद करने लगा, प्लीज सब्बू तुम भी सुनाओ ना अपनी स्टोरी, लेकिन तुम भी आज शाम झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे झूठ से हमारी चाहत और अंजलि की भावनाओं को भी आहत होगा। विनू, जब तुमने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से बता दिया तो भला मैं भी तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम जो बताओगी सच बताओगी। एकाएक गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारी अंजलि की कसम आज की शाम मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यह सुनकर मुझे लगा जैसे वह गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम ले रही हो। विनू, तुमसे बिछड़ने के बाद मैं भी हीर और लैला की तरह रोई कल्पी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि मैं तुम्हें भुला दिया था। परीक्षाओं के लगभग 6 महीने बाद ही मेरा विवाह संजीव से हो गया। संजू के भरे पूरे संयुक्त परिवार की बहू बन गई। मैंने भी एक आदर्श और ईमानदार पत्नी का परिचय देकर पहली ही रात को संजू से अपना अतीत बताना चाहा, लेकिन इस भय और आशंका से नहीं बताया कि कहीं संजू के शक से वैवाहिक जीवन के बगिया में बाहर आने से पहले ही पतझड़ ना आ जाए। लेकिन एक दिन टेलीविजन पर आ रही सत्यकाम फिल्म जो तुम्हारे साथ देखी थी को देखकर मैं अपने आंसू न रोक सकी और पास बैठे संजू की अनुभवी आंखों के सामने कमजोर पड़ गई और उन्हें अपना अतीत बता दिया। यह सुनकर संजू मुस्कुरा पड़े। सच जान लेने के बाद ना ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आया और ना ही उनके प्रेम में कमी। उन्होंने कभी भी मेरे अतीत के बारे में नहीं कुरेदा। संजू का असीम प्यार पाकर मैं गुलाब की तरह खिल उठी। शादी के 1 साल के भीतर ही अपने प्यार की सुखद परिणति के रूप में जुड़वा बच्चियों के आगमन से हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ गई। बेटियों के लालन पालन और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गई कि याद ही नहीं रहा कि तुम कभी मेरी जिंदगी में आए थे। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। कुछ पलों के लिए हम दोनों खामोश हो गए। एक क्षणिक खामोश में ऐसा लगा मानो हम दोनों ने अपना पूरा अतीत जी लिया और एक दूसरे के वर्तमान पर पूरी तरह खुश और संतुष्ट नजर आए। इतने सालों बाद मिलने के बावजूद भविष्य में फिर मिलने के लिए कोई बेताबी या पहल हम दोनों में से किसी को नहीं थी। तभी तो घर का पता, मोबाइल, ईमेल आदि कोई औपचारिकता से दूर रहकर बस एक नज़र दोनों ने जी भर कर देखा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। खड़े होकर सुब्बू बोली, सॉरी विनो, तुम्हें घर चलने के लिए नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ संजू तो तुम्हारा सत्कार करेंगे, लेकिन संयुक्त परिवार के बुजुर्ग जो शायद तुम्हारा परिचय जानकर तुम्हारे आगमन से प्रसन्न ना हो, उन्हें अप्रसन्न करके मैं तुम्हें अपना अतिथि नहीं बना सकती। तभी उसकी बेटियां आ गई। चलो बच्चों घर चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे, कहती हुई अपनी बाहें उनके गले में डालकर चली गई। मैं भी अपने प्रशिक्षण केंद्र लौट आया। कमरे में घुसते ही मोबाइल गुनगुना उठा, जो भूल बस वहीं रह गया था। रिसीव किया, अंजलि का था। बनावटी नाराजगी और प्यार से ओतप्रोत उलाने भरे स्वर में बोली, कहाँ थे अभी तक, कब से ट्राई कर रही हूँ। फिर छेड़ने के अंदाज में बोली, जनाब कुछ याद है आपको, आधा दर्जन जनवरी की शाम है, इस हसीन शाम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। इस शाम को अपने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने पहले प्यार से किया था। मेरी जिंदगी में यह शाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शाम को जिस शख्स ने भले ही किसी अन्य से प्रेम किया हो, लेकिन मुझे बेहिंता चाहता है और उसकी चाहत ही मेरी जिंदगी है। फिर एक मासूम बच्चे की तरह मचल उठी, प्लीज जल्दी आओ ना, आपसे दूर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बस अंजलि, एक दिन और परसों पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास, उसे प्यार से दिलासा दी। सच तो यह है कि अंजलि को सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन आधा दर्जन जनवरी की शाम को उसका पहले मेरे प्यार को याद ताजा करना मुझे गुदगुदा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।